तीन व्रतों का उल्लेख किया स्वामी जी महाराज ने, सेवा करने के लिए सभी को अपना मानो, अपने सुख के लिए किसी को अपना मत मानो और केवल प्रेमी होने के लिए केवल प्रभु को अपना मानो। मानने का स्वभाव है हम लोगों का, किसी न किसी को हम लोग अपना मानते हैं और किसी न किसी कारण से मानते हैं। तो बहुत सी वस्तुओं को अपना माना, बहुत से व्यक्तियों को अपना माना और किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ अपना संबंध रखा। तो मानने को आता है हमें, स्वीकृति मनुष्य के जीवन में है, परंतु भगवत अनुरागी संत ऐसा बताते हैं कि विवेक विरोधी स्वीकृतियों को जीवन में रखने से अनेकों विकारों का जन्म हो गया, जिसके साथ नित्य संबंध है नहीं, हो सकता नहीं, और जिसके साथ अपना सदा का नाता निभ सकता नहीं। कोई साथी संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जो हमेशा के लिए हमारा साथ दे सके और जिसका साथ हमेशा के लिए प्रिय लग सके, ऐसा कोई साथी संसार में मिलेगा नहीं। इसलिए केवल प्रेमी होने के लिए प्रभु को अपना मानना, यह विश्वास पक्ष का सबसे ऊंचा, सबसे बढ़िया उपयोग है। जैसे क्रिया शक्ति जो शरीर में है हम लोगों के, सबसे बढ़िया ऊंचा उपयोग सेवा है। कुछ करने का बल है तो सेवा करना चाहिए। ऐसे ही विचार की शक्ति जो है मनुष्य में, उसका सर्वोत्तम उपयोग है निज स्वरूप की खोज, संसार के स्वरूप का परिचय लेना। जिसका अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व जिसका नहीं है, केवल जिसकी प्रतीति हो रही है, उसके प्रभाव से अपने को मुक्त कर लेना विचार शक्ति का सबसे बढ़िया उपयोग है। तो उसी प्रकार भाव शक्ति का सबसे बढ़िया उपयोग है कि बिना देखे बिना जाने परमात्मा को केवल प्रेमी होने के लिए अपना मान लिया जाए। इसी आधार पर मानव सेवा संघ की प्रणाली में ऐसा कहा गया कि सत्संग में कोई भी भाई कोई भी बहन पराधीन तथा असमर्थ नहीं है। अर्थात सत्य की स्वीकृति में कोई भी भाई कोई भी बहन पराधीन नहीं है। क्यों पराधीन नहीं है? क्योंकि उस इसमें बाहरी वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति की सहायता नहीं चाहिए। दो चार लोग सहायता करेंगे तब हम सत्य को स्वीकार करेंगे, शरीर बड़ा बलिष्ठ होगा तब हम परमात्मा को मान पाएंगे, बहुत बहुत दिनों तक उपवास करेंगे तब परमात्मा को स्वीकार कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि बड़ा पढ़ना लिखना करेंगे, बहुत अध्ययन होगा तब ये स्वीकृति बनेगी, ऐसा नहीं है। जो जीवन सबसे उत्तम है और जो सबके लिए समान रूप से अनिवार्य है, उसमें व्यक्ति को पराधीन नहीं बनाया गया। बड़ी स्वाधीनता है इस क्षेत्र में, बड़ी स्वाधीनता है मनुष्य के जीवन के इस पक्ष में कि हम चाहे कैसे भी हो, यदि स्वयं के द्वारा उस अलख अगोचर अविनाशी परमात्मा को अपना मानना पसंद करें तो कर सकते हैं। कोई मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, इतनी स्वाधीनता है। और प्रेम पंथ का साधक होने के लिए यह ऐसा अनिवार्य तत्व है कि जो परमात्मा को अपना मानने के लिए तैयार नहीं है वो किसी विधि विधान से भक्त नहीं हो सकेगा। दोनों ही बातें देख लो, जो इस सत्य को स्वीकार करना पसंद करेगा उसको किसी भी प्रकार की शक्ति बाधा नहीं डाल सकती है। अपने द्वारा स्वीकार करना है हम कर सकते हैं, और जो इस सत्य को, इस मौलिक बात को, जो आस्तिक दर्शन का सार सर्वस्व है कि आत्मीयता का संबंध प्रभु से मान लेना, इस सत्य को अगर आप स्वीकार करना नहीं चाहते हैं तो किसी भी जप से, तप से, क्रिया से, विधि विधान से आपके भीतर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाए ये संभव नहीं है। तो इसी को मौलिक सत्य कहते हैं, इसी को सर्वमान्य सत्य कहते हैं, इसी को आस्तिक दर्शन का सत्य कहते हैं। ये एक चीज ऐसी है कि जो स्वीकार कर ले वो चाहे किसी भी विधि विधान से करे, तो ना करे, तो माने तो ना माने, तो उसमें बल हो तो ना हो तो कुछ परवाह नहीं, केवल इस सत्य की स्वीकृति मात्र से उसके जीवन में परिवर्तन आता है, अहम में परिवर्तन आता है, अपने ही में विद्यमान, नित्य विद्यमान अपना परमात्मीय परमात्मा स्वयं ही प्रकट होकर उस साधक को विश्वास भी दिला देते हैं, शक्ति भी दे देते हैं, उसके दिए हुए प्रेम भाव को आदर पूर्वक स्वीकार भी कर लेते हैं और खुद अपना ही प्रेम उसमें भर के उसे अपना प्रेम पात्र बना लेते हैं। यह सब होता है। तो एक तो इस बात पर मैं भाई बहनों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि बहुत से ईश्वर विश्वासी साधक कई बातों में, बाहरी विधि विधानों में फंसे रहते हैं, सोचते हैं इतनी संख्या में इतना नाम पूरा हो जाएगा, लेना तो भगवान मिल जाएंगे, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है। तो स्वामी जी महाराज कहते कि भैया तुम सोचो कि नाम की संख्या का महत्व है कि नाम तुमको प्यारा लगे, ये महत्व है। प्रेम स्वरूप परमात्मा से अभिन्नता प्रेम तत्व के आधार पर होती है, ना कि किसी क्रिया विशेष के आधार पर। और नाम निष्ठ संत जो हुए हैं, जिन्होंने प्रभु के नाम का ही आधार माना, तो उनमें भी शब्द और क्रिया की महिमा नहीं थी, नाम के प्रति उनकी बड़ी गहरी निष्ठा थी। तो प्रधानता निष्ठा की हो गई, शब्द की नहीं हुई। तो नाम निष्ठ बड़े बड़े संत हुए हैं, उनके जीवन को आप देखेंगे तो उसमें क्रिया का महत्व नहीं था, नाम के प्रति उनकी ऐसी ही निष्ठा और ऐसी ही प्रियता थी जैसे कि नामी के प्रति होती है। तो उन्होंने उसको अपना इष्ट माना, उसको अपना साध्य माना और उसके प्रति अपने संपूर्ण जीवन की सारी भावनाएं उस नाम से अटैच्ड कर दिया, उसी से उसको जोड़ दिया। तो मैंने जो मानव जीवन की व्याख्या की तो मेरे भीतर ये अर्थ निकला कि भाई महत्ता किस बात की है कि मनुष्य की सारी जीवनी शक्ति, संपूर्ण भावनाएं नाम के प्रति, रूप के प्रति, लीला के प्रति, धाम के प्रति, प्रभु की महिमा के प्रति लग गई कि नहीं लग गई, इस बात की विशेषता है। ऐसा नहीं कि तन भी बना रहे, धन भी बना रहे, कुटुंब भी बना रहे, दुनिया में नाम सम्मान सुख सुविधा सब बनी रहे और उसके साथ ही भक्ति भक्त भी हो जाऊं। तो जहां अन्य नाशवान वस्तु परिस्थिति और व्यक्तियों का महत्व है, जहां नाशवान के प्रति खिंचाव और आकर्षण है, ऐसे व्यक्तित्व में वह परम पवित्र प्रेम प्रवाहित नहीं होता है। तो परिवर्तन प्रभु की ओर से नहीं होना है, वे सब समय समान रूप से सभी में भीतर बाहर विद्यमान ही है। ऐसा नहीं कि मेरे नाम लेने से बन जाएंगे और नहीं लेने से बिगड़ जाएंगे, कि मेरे नाम लेने से ईश्वर सिद्ध होगा और नहीं लेने से नहीं होगा। तो सत्य उसको नहीं कहते हैं जो किसी अपनी उपस्थिति के लिए किसी और की अपेक्षा रखता हो। सत्य वो नहीं होता है, वो तो स्वयं सिद्ध होता है, वो स्वतः सिद्ध होता है। तो ऐसे जो परमात्मा हैं, वे हमारे विधि विधान से, हमारे साधन से, हमारी श्रद्धा भक्ति से बन जाते हो और श्रद्धा खत्म हो जाए तो बिगड़ जाते हो, ऐसी बात नहीं है। ये तो रहते ही हैं, हमेशा ही हैं और समान रूप से भीतर बाहर सब तरफ विद्यमान ही हैं। तो मैंने सोचा कि अंतर कहाँ आता है, तो आप मनुष्य के अहम रूपी अणु की बनावट पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए। अहम रूपी अणु मैं किसको कहती हूँ, कि हम सभी लोग एक अपने अस्तित्व का अनुभव करते हैं, भीतर भीतर अपने आप को सब समय भासित होता रहता है कि मैं हूँ। लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, मैं हूँ। तो ये हाथ में है? नहीं। ये आंखें में है? नहीं, क्योंकि हाथों के कट जाने के बाद भी मैं हूँ, और आंखों के खराब हो जाने के बाद भी मैं हूँ, और पांव कट जाने के बाद भी मैं हूँ। और मैं हूँ कहने के लिए वाणी काम न करे, जुबान बंद हो जाए, तब भी मैं हूँ। भीतर भीतर यह चेतना बनी रहती है कि मैं हूँ। तो ये मैं हूँ जिसको, जिसके आधार पर हम लोग इसको अनुभव करते हैं, वो हाड़ मांस का बना हुआ नहीं है, भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं है। जानने वाले जो ज्ञानी जन है, अनुभवी संत जन है, वो कहते हैं कि इस मैंपन की रचना जो है तुम्हारी, वो अलौकिक तत्व की है। शरीरों की रचना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, शरीरों की रचना जो है, यह तो भौतिक तत्व की हुई है, और इस मैं की रचना अलौकिक तत्व से हुई है। तो अलौकिक तत्व से इसकी रचना हुई है, इसलिए इसमें यह सामर्थ्य है कि ये जब चाहे तब, जब पसंद करे तब, उस अलौकिक तत्व की सत्ता को स्वीकार कर सकता है। उस अलौकिक तत्व के आनंद को, सातत्य को, उसके अविनाशी स्वरूप को अपने में प्रकट हुआ अनुभव कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि यह मैं स्वयं ही अलौकिक तत्वों से बना हुआ है। यहाँ तक तो ठीक हो गया। इसी आधार पर जो सिद्धांत वाक्य है वो ऐसा है कि भाई इस मैं का नाश नहीं होता, तो अविनाशी के तत्व से बना हुआ यह मैंपन भी अविनाशी ही है। अविनाशी होते हुए भी नाशवान शरीरों के साथ अपने को मिला लिया तो मृत्यु का भय सिर पर चढ़ गया, और बनने बिगड़ने वाले संसार की ओर आकर्षित हो गया तो आसक्ति के विकार में फंस गया। शरीरों की खातिर से धन की महिमा को स्वीकार कर लिया तो लोभ के विकार में फंस गया। तो कहीं लोभ का भार ढो रहा है, कहीं मोह का भार ढो रहा है। अविनाशी होने पर भी अविनाशी के आनंदमय अनुभूतियों से वंचित होकर नाशवान के साथ अपने को मिलाकर नाश के भय से भयभीत होकर जी रहा है। अपने पर यह दशा लागू हो रही है कि नहीं? हो रही है। अब इसमें से निकलना अपने को अभिष्ट है कि नहीं? अभिष्ट है। उसी के लिए हम लोग सब यहाँ आकर के बैठे हैं। तो अब देखो, अब कैसे करें, कैसे इस दशा से निकलें? तो बड़ी बढ़िया बात है, मनुष्य के अहम रूपी अणु की रचना में वो क्या है कि अपने संबंध में वो जिस स्वीकृति को स्वीकार कर लेता है उसी के साथ वो अपने को मिला देता है, उसी से उसका तादात्म्य हो जाता है। तो अंतर क्या हुआ? अंतर इतना हुआ कि चूंकि वो अविनाशी तत्व से बना हुआ है, इसलिए जब वो अपने को नाशवान शरीर और संसार से मिला के इनका सुख लेना पसंद करता है तो इनसे उसकी जातीयता नहीं है। तो चाहता तो है मिला के रखना, पसंद तो किया उसने इसके साथ मिल के रहना, लेकिन दोनों का मेल कभी बैठता नहीं है। तो क्या होता है कि बहुत प्रकार की अनुकूलता के बीच में वो भीतर 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 अस्थिरता, अनिजी अनिजी उसको लगता रहता है, कुछ और चाहिए कुछ और चाहिए। कि सब प्रकार की बाहरी अनुकूलता में भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मालूम होती है। समझदार आदमी थोड़े में समझ जाता है कि भाई मेरा घर ये नहीं है, मेरे नाते रिश्ते कुटुंबी ये नहीं है, इनके बीच में रह करके संतुष्टि नहीं हो सकती। इसका अर्थ क्या है कि आपका मैंपन बना है अलौकिक तत्व से, और वो चाहता है अपने सजातीय से मिलना। उसके भीतर भूख प्यास उस अनंत अविनाशी के अनंत ज्ञान प्रकाश से है, उसकी भूख प्यास उस प्रेम स्वरूप परमात्मा के मधुर रस की है। और हम लोग अपने उस स्वरूप को भूल करके जब देह बुद्धि से जड़ता के स्तर पर उतरकर इस जड़ जगत के संयोग से सुख भोगना पसंद करते हैं तो अनेक विकारों में फंस भी जाते हैं और भीतर अपने को संतुष्ट भी नहीं कर पाते। तो ये आपकी जो रचना है उसकी विशेषता है कि आप विजातीय के साथ मिल करके दिल बहलाना चाहते हैं तो वो दिल उसमें फंसता नहीं है, बहलता नहीं है। बार बार हमारी आसक्ति से हमारा मन चित्त बुद्धि हमारी इंद्रियां जगत की ओर लगती हैं और बार बार स्वभाव से उधर से हट जाती हैं, क्योंकि हमारी सजातीयता इससे नहीं है, बनने बिगड़ने वाले से नहीं है। हमारी सजातीयता उस अविनाशी से है, उस अविनाशी आनंद से है, उस अविनाशी प्रेम रस से है। इस बात पर अगर आपकी दृष्टि चली जाती तो साधन के पथ की सब कठिनाइयां दूर हो जाती। कितना बड़ा भ्रम बैठा है अपने में कि हम लोग सोचते हैं कि हमने पसंद किया था भगवान का भजन और मन इतना पाजी है कि उसको संसार पसंद है। तो स्वामी जी महाराज कहते कि भैया, मन का अगर स्वतंत्र अस्तित्व होता और वो तुम्हारी बात को सुन करके उत्तर दे सकता होता तो तुम पर मुकदमा दायर कर देता कि भूल करो तुम और दोष लगाओ मुझको। तो मन बेचारे का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मन भी तो एक करण है, इंद्रियां भी करण है, बुद्धि भी करण है, कर्ता धर्ता तो आप हैं। इस दृष्टि से ईश्वर में विश्वास करने वाले सज्जन, ईश्वर में विश्वास करने वाले भाई बहन यदि चाहते हैं कि इसी वर्तमान में शरीर के नाश होने से पहले उस अशरीरी अविनाशी परमात्मा से मेरी भेंट मुलाकात हो जाए और प्रेम के आदान प्रदान का आनंद आ जाए, तो उनको अपने अपने अहम के बनावट में विश्वास करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, विचार के द्वारा, मान्यता के द्वारा, आवश्यकता के द्वारा, जैसे भी हो अपने को ये बात समझा ही लो कि चाहे कुछ भी करोगे इस विजातीय के साथ मिलकर रह नहीं सकोगे और ये विजातीय तुमको संतोष दे नहीं सकेगा, आज तक दे नहीं सका। संसार और शरीर हम लोगों को संतोष दे सका? नहीं दे सका। तो आज तक दे नहीं सका, आगे भी दे नहीं सकेगा। इसको पकड़ करके बैठना हम लोग चाहते हैं तो बैठ नहीं सकेंगे। अनवरत गति है, निरंतर गति है। कौन सी गति है? निर्माण और विनाश। एक ओर बनता जाता है, दूसरी ओर बिगड़ता जाता है, बनता जाता है, बिगड़ता जाता है। तो जहाँ निर्माण और विनाश का अनवरत क्रम चल रहा है उसमें परम शांति चाहने वाले को संतोष मिलेगा ही नहीं। तो आज तक मिला नहीं, ये हमारा आपका अपना जाना हुआ तथ्य है, और कभी मिलेगा नहीं, ये बहुत ही युक्ति युक्त निर्णय है, खूब लॉजिकल कंक्लूजन है कि आगे भी नहीं मिलेगा। तो एक तो अपने को इस बात को समझाना है, और दूसरी बात जो ईश्वर विश्वासी होने के लिए अनिवार्य है वो ये है कि जिसकी तुम भीतर भीतर आभास सब समय पाते ही रहते हो, आवश्यकता अनुभव करते ही रहते हो, जिसकी विद्यमानता वो भीतर वाला भी हम पर प्रकट कर रहा है और उसी का प्रतिरूप ये बाहर से भी हम लोगों पर प्रकट हो रहा है। अब थोड़ा ऊंचे स्तर से विचार कीजिए, जब एक ही का अस्तित्व है उसके अतिरिक्त दूसरा को कुछ स्वतंत्र अस्तित्ववान है ही नहीं, तो जो ये व्यक्त जगत दिखाई दे रहा है ये उससे अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला नहीं है, ये भी उसी में से निकला है। तो वही परमात्मा, वही मेरा प्यारा अपने असली रूप में अपना प्रेम निमंत्रण दे करके हम लोगों को अपनी ओर खींचता रहता है। सुख की प्रवृत्तियों में विचरने वाला व्यक्ति भी रह रह के परमात्मा को याद करता रहता है। करता है कि नहीं करता है? देह में आसक्त रहने वाला व्यक्ति भी समय समय पर परमात्मा का नाम लेता रहता है, तो वो भीतर से खींचते रहते हैं अपनी ओर, और बाहर से भी इस व्यक्त जगत के रूप में भी वे स्वयं ही हम लोगों को अपने इस बाहरी रूप की नश्वरता का परिचय दे दे करके इसकी ओर से हटाने का प्रयास करते रहते हैं। ये भी उसी मंगलकारी का मंगलमय विधान है कि बहुत प्रिय संयोग जो माना उसमें झटपट वियोग हो गया। बहुत प्रिय संयोग संसार में जहां आपने माना कि ये तो बड़ा सुखद है, तो जिसको आपने बहुत प्रिय संयोग माना उसमें बहुत ही भयंकर दुखद वियोग आ गया कि नहीं आ गया? ये विधान किसका है? सृष्टिकर्ता का है। यह विधान किसका है? आपके प्यारे का है। यह विधान कैसा है? आपके लिए बड़ा ही मंगलकारी है। तो प्रभु का ही प्रतिरूप यह जगत जो है वो भी अपनी नश्वरता का परिचय देकर हम लोगों को सलाह देता है कि भैया हमारे में कुछ है नहीं, उधर ही जाओ। ये कह रहा है कि नहीं? इसमें अपना मंगल है कि नहीं? लेकिन वारे हम उस मंगलमय की मंगलकारिता पर दृष्टि नहीं जाती तो उसको गाली देना शुरू करते हैं। तुमने हमारा बिगाड़ दिया, तुमने हमारा बिगाड़ दिया। बिगाड़ा किसने? मैंने, खुद ने। उन्होंने बनाया, संयोग में वियोग दिखाकर, जिंदगी में मृत्यु दिखाकर, सुख में दुख दिखाकर, निर्माण में विनाश दिखाकर जगत की ओर से वे अपनी ओर बुला रहे हैं। अरे मेरे बच्चे उधर कहां जा रहे हो, इधर आओ। तो इतनी मंगलकारिता है उनकी। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कविता है और उसमें यह बताया गया कि परमात्मा जो है जगत पिता, उसने यूं करके गोदी में पकड़ रखा है मनुष्य को, और मनुष्य जो है वो अपने विकारों से अंधा हुआ, अंधेपन में वो दौड़ दौड़ करके संसार की ओर दौड़ रहा है और खोज रहा है कि कहाँ रस मिलेगा, कहाँ रस मिलेगा, कहाँ रस मिलेगा। तो परमात्मा की तरफ से बहुत प्रेम भरी आवाज उस कवि ने लिखा, ओ माई चाइल्ड, ओ ब्लाइंड। परमात्मा कह रहे हैं, अरे मेरा बच्चा, अरे अंधे, तू तो मेरी गोदी में ही है, मैंने तो तुमको कस के पकड़ रखा है, जरा मेरी ओर देख तो सही। और वो उल्टी तरफ देख रहा है, तो ये पीछे से उसको गोदी में पकड़े हुए हैं और वो सामने की तरफ अपने अंधेपन में कहाँ रस है, कहाँ रस है, कहाँ सुख है, कहाँ सुख है, कहाँ जीवन है, कहाँ जीवन है। कभी कभी जंगल में दौड़ रहा है, कभी महल में दौड़ रहा है, कभी धन में दौड़ रहा है, कभी खुराक में दौड़ रहा है, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो छटपट छटपट कर रहा है, भाग करके उधर जा करके संसार की तृष्णा में उस अग्नि में जल जाने के लिए। और उसका जो परम हितैषी पिता है, उसने कस के पीछे से यूं पकड़ लिया है और पुकार रहा है, ए मेरे प्यारे बच्चे, अरे वो पगले तुम कहाँ जा रहे हो, अरे अंधे तू कहाँ देख नहीं रहा है मुझको, मैं यही तो हूँ, मैंने तो तुमको संभाल रखा है, मेरे बच्चे जरा उलट कर मेरी तरफ देख तो सही। तू जिस प्रेम को खोज रहा है, तू जिस जीवन को खोज रहा है, वो तो तेरे साथ ही है। कई स्टांजा है, वो सब मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है मुझे, जब कभी याद आ जाए तो आनंद आ जाता है। और स्वामी जी महाराज से एक बार एक साधक ने पूछा कि स्वामी जी महाराज बताइए परमात्मा कहाँ है, आप दिखा सकते हैं? तो महाराज जी ने कहा, हाँ दिखा सकता हूँ, बताइए कहाँ है। तो कहा, तेरे पीछे है। तो वो युवक लड़का था, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था, समझदार तो था ही, स्वामी जी ने कहा तेरे पीछे है देख। तो ऐसा करके पीछे देखा तो कहने लगा कि कहाँ है, यहाँ तो नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुमने पीछे देखा कहाँ, फिर घुमाया ऐसे, तो ये भी तो सामने ही हुआ ना, पीछा तो हुआ नहीं। तो मैं बिल्कुल सच कहता हूँ भैया, परमात्मा तेरे पीछे ही है, तू घूम सिर घुमा के देख तो सही। और एक दूसरी जगह पर बड़े अच्छे सूत्र के वाक्य लिखे हुए हैं, ये लिखा है कि जो संसार की कामना लेकर परमात्मा के पास जाता है, उसके लिए परमात्मा भी संसार है, और जो निष्काम होकर संसार के पास जाता है, उसके लिए संसार भी परमात्मा है। कितनी अच्छी बात है। तो संसार की कामना लेकर परमात्मा के पास जाता है तो परमात्मा भी संसार है, और निष्काम होकर संसार के पास जाता है तो संसार भी परमात्मा है। तो ऐसा अद्भुत है आपका अहम, ऐसा विलक्षण तत्व है कि जिसके समान दूसरी कोई बात है ही नहीं। बड़ी विलक्षणता है उसमें। क्या विलक्षणता है कि अपने को शरीर से मिला दो, संसार से मिला दो, सुख भोग की आसक्ति के आधार पर तो सब व्यवहार जड़ जगत के समान करने लगो। हाय हम मर रहे हैं, हाय हम मिट रहे हैं, हाय हम बर्बाद हो गए, हाय हम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और विवेक के प्रकाश में अपने को मिला दो परमात्मा से, तो उन्हीं के समान आनंद स्वरूप हो जाओ, उन्हीं के समान प्रेम स्वरूप हो जाओ। तो अपनी भूल जनित स्वीकृति को मिटा देना और जीवन के सत्य को स्वीकार कर लेना, इसी का नाम सत्संग है। इस सत्संग के लिए कितना परिश्रम चाहिए, कितना समय चाहिए, कितनी सहायता चाहिए, सोचो तो। ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा भ्रम हो गया है सत्संगी समाज को कि सोचते हैं कि बहुत दिन तक सुनते सुनते तो कुछ होगा। अरे भाई, सुनी हुई बात को अगर मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं तो कितने दिन भी सुनो, सुनते सुनते सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, और सुने हुए वाक्य का अनुसरण ना करो तो कल्याण नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा हम लोगों को होने नहीं देना चाहिए। सुनने की शक्ति के रहते रहते सुनना खत्म करो, बोलने की शक्ति के रहते रहते बोलना खत्म करो, तो सुनने का जो राग है वो भी मिट जाएगा और बोलने का जो राग है वो भी मिट जाएगा। और इस सुनने और बोलने में थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा लगता रहता है, इससे बहुत अच्छा, इससे बहुत ऊंचा जीवन है न सुनने में न बोलने में। वो कहाँ है? वो सत्य की स्वीकृति में है। वह सत्य कौन सा है? ईश्वरवाद की दृष्टि से प्रभु की आत्मीयता है। तो उनके साथ जिसने आत्मीयता स्वीकार कर लिया, उसके अहम में एक प्रकार का परिवर्तन होता है और स्वतः ही होता है। तो असत्य को जब हम लोग स्वीकार करते हैं कि ये मेरे भाई, ये मेरे बेटे बेटी, ये मेरे कुटुंबी, ये मेरी संपत्ति, तो असत को स्वीकार करते हैं तो विकारों की उत्पत्ति तो होती है, लेकिन अहम के भीतर जो सत्य है उस सत्य का नाश नहीं होता। और जब नित्य विद्यमान परमात्मा की आत्मीयता स्वीकार कर लेते हैं, मेरो तो दुर्धर गोपाल दूसरो न को, जैसे मीरा जी ने स्वीकार कर लिया, तो अपने द्वारा जब उस नित्य विद्यमान आत्मियों की आत्मीयता को स्वीकार कर लेते हैं तो विकारों का नाश हो जाता है और आत्मीयता जो है उसके प्रभाव से, उस अहम में से ही बीज रूप में जो प्रेम तत्व विद्यमान है वो प्रकट हो जाता है। तो नाशवान को अपना मानने से भी नाशवान के साथ अभिन्नता नहीं होती, और अविनाशी को अपना मान लेने से नाशवान विकार नष्ट हो जाते हैं। पकड़ में आती है बात? तो अब इस ढंग से हम लोगों को चलना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, क्या जाने कब क्या हो जाए, कुछ पता ही नहीं है। तो तीन चार बातें हैं जिन्होंने आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक गुरु की वाणी में श्रद्धा करके वेद पुराण गीता रामायण कुरान बाइबल इनकी वाणी में श्रद्धा करके जिन्होंने परमात्मा को अपना कहकर स्वीकार कर लिया, उस स्वीकृति से उनका अहम बदलता है, और अहम बदलता है तो सारे के सारे करण स्वतः ही बदल जाते हैं अपने आप। तो पहले मुझको अपनी स्वीकृति बदल देनी चाहिए। और विश्वास का बड़ा भारी फल मैंने सुना है संत की वाणी में, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो जीवन का सत्य है उसमें अगर विश्वास करो तो उस सत्य में विश्वास करने का फल जो है वो ज्ञान के समान ही फलदायक होता है। अर्थात जिस नित्य तत्व में हम विश्वास करते हैं वह नित्य तत्व हमारे लिए ज्ञान से प्रमाणित होने के समान ही प्रत्यक्ष हो जाता है, और हुआ है भक्तों के जीवन में वह सत्य ऐसा ही प्रत्यक्ष हुआ है। बड़ी कोमलता है उस ओर और बड़ा आकर्षण है उस ओर। परमात्मा को हम सब लोग सहज ही प्यारे हैं, अपने ही में से उन्होंने बनाया तो हम सभी उनको बहुत प्यारे लगते हैं और हर प्रकार से हमारी की हुई भूलों को क्षमा करने का एक सहज स्वभाव है परमात्मा का। हर तरह से हमारी की हुई भूलों को क्षमा करते रहते हैं, हमारा वर्तमान में देखते हैं, हमारा भूतकाल देखते नहीं है। और कितने ही दिनों का भूला भटका अपना बच्चा हो, कितना ही माता पिता का विरोधी बनके लड़ता झगड़ता रहा हो, भटक गया हो, विमुख हो गया हो, कितने भी वर्षों के बाद अगर वह प्रेम से प्रेरित होकर आवे और कहे कि मुझसे भूल हो गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो अब तो हम ऐसा नहीं करेंगे, अब तो हमको आपका प्यार चाहिए, आपकी गोद चाहिए, तो माता पिता कितने खुश हो जाते हैं, कितने आनंदित हो जाते हैं। तो जब सांसारिक माता पिता अपनेपन के नाते अपने बच्चों की भूतकाल की सब भूलों को क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो क्षमाशील क्षमा सिंधु अनंत परमात्मा हमारी भूलों का हिसाब रखेंगे? ये नहीं रखते हैं। अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं कि जहां उन्होंने शरण में आए हुए की भूतकाल की सब भूलों को क्षमा किया है, तो वे हमारी भूल को भी मिटा देते हैं और भूतकाल की हुई भूलों के परिणाम को भी मिटा देते हैं। इतनी सामर्थ्य और किसी में नहीं है। तो निर्दोष भी बना देंगे वर्तमान में तत्काल और भूतकाल की हुई भूलों के परिणाम को भी क्षमा कर देते हैं, करते हैं ऐसा, देखते नहीं है हमारी भूतकाल को। बस आवश्यकता क्या है कि एक बार साहस करके संपूर्ण हृदय की भावना के साथ उनकी आत्मीयता को हम लोग मान लें, फिर तो नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, माला जपते हैं कि नहीं जपते हैं, पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये अपनी अपनी रुचि बनावट परिस्थिति की बात हो जाएगी। अगर भीतर में आपने उनके नित्य संबंध को स्वीकार कर लिया तो बाहर से जो भी विधि विधान आप करेंगे सब सजीव हो जाएगा, सब सजीव हो जाता है। पुष्प का अर्पण करना भी सजीव हो जाता है, माला जपना भी सजीव हो जाता है, भोग लगाना भी सजीव हो जाता है, अनेक प्रकार से उनकी सेवा करना भी सजीव हो जाता है। साकार निराकार उपासना के जितने विधि विधान है सब सजीव हो उठते हैं, सबके द्वारा सहयोग मिलने लग जाता है और साधक की साधन की हर क्रिया में उसके हृदय का प्रेम भाव समा जाता है। परमात्मा को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है उनको, बहुत मजा आता है उन्हें। तो असली बात जो है वही अपने को पकड़ना है और उसके सहारे जब तक शरीर रहेगा तब तक कुछ न कुछ तो करेंगे ही हम लोग। तो मैं समझती हूँ कि इस हाड़ मास के शरीर को रखने के लिए एक कमरे में हम झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो प्रभु का प्रतीक बना करके मंदिर में बैठाया है, तो उस मंदिर का काम क्यों नहीं करोगे? अगर एक शरीर जो बात बात में गंदा हो रहा है तो उसकी गंदगी की सफाई करने के लिए विविध प्रकार से स्नान करते हो, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते हो, तो अपने प्यारे का विग्रह बैठा रखा है तुमने, तो उनको क्यों नहीं स्नान कराओगे, क्यों नहीं सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करोगे? तो इस प्रकार से वो जितनी प्रतीकात्मक बातें हैं वे सब सार्थक हो जाती हैं। कब? जब परमात्मा को अपना मानो तब। थोड़े दिन पहले की बात है, शाहबाद जिले के एक गांव की घटना है। वहां पर एक परमात्मा के प्रेमी गृहस्थ पुजारी रहते थे, पूजा करते थे, करते करते वृद्धावस्था आ गई उनकी। तो मंदिर में भगवान राम, माता जानकी जी और भैया लखनलाल का विग्रह पहले से स्थापित था। तो खड़ी खड़ी मूर्तियां थी, तीनों मूर्ति। वो बाबा पूजा करता था, अपना बालक मानता था, तो बालक की सेवा करने में बाप को बड़ा मजा आता है, खूब प्रेम से करते। केवल वे नौकरी करने के हिसाब से नहीं, उसकी जिंदगी ही रमी थी उन मूर्तियों की पूजा में। तो बूढ़ा हो गया, कमर में दर्द होने लगा, रीढ़ की हड्डी झुक गई। तो एक दिन स्वप्न में उनके लाला ने कहा कि बाबा तू बूढ़ा हो गया, तेरे को सेवा में कष्ट होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, तो अब तू पूजा छोड़ दे। तो भक्त तो जब उनकी प्रियता बढ़ जाती है, आपस में मेल जोल बढ़ जाता है, तो शिष्टाचार की बातचीत खत्म हो जाती है, तो एकता हो जाती है। तो बूढ़ा कड़क के बोलने लगा कि लाला ये कैसे हो सकता है, शरीर के रहते रहते मैं तेरी सेवा कैसे छोड़ दूंगा। अब लाला सोचने लगे कि अब और कुछ कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बाबा, सेवा तू नहीं छोड़ेगा तो बैठ करके पूजा किया कर। तो बड़ा अच्छा सिखा रहे हो लाला, तू खड़ा रहेगा मैं बैठ जाऊंगा, ये नहीं होगा। अच्छी बात, स्वप्न खत्म हो गया, निद्रा पूरी हो गई, रात बीत गई। दूसरे दिन सवेरे जब बूढ़ा बाबा सामान लेकर के मंदिर में पूजा करने आया, तो उसके परम प्रेमी लाला तीनों मूर्ति पालथी मार के बैठे हुए मिले। बैठे, उनको बैठने में क्या देर लगती। अब बूढ़े बाबा की कमर में दर्द है और लाला सही, बाबा कष्ट पाए और लाला सेवा ले, संभव।